ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, तुम पर वारी जाऊं, तुम पर वारी जाऊं। लेकिन अभी बाप स्वयं आए हैं और बाप बच्चों पर वारी जाते हैं और बाप बच्चों को वारिस बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब बाप बच्चों को वारिस बनाते हैं और बाबा भी तुम्हारे सामने डायरेक्ट हैं, तो तुम बच्चों को भी क्या करना है, बाप को वारिस बनाना। लेकिन वारिस बनाने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। वारिस का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बाबा को दे दिया, लेकिन संकल्प से, बुद्धि से बाबा को देना है। लेकिन बाबा कहते थे हमेशा, बाबा को जो भी देते थे तो बाबा कहते थे मैं लेके क्या करूंगा। बाबा कहते थे ट्रस्टी होकर करो। ये सब रहे बुद्धि में कि बाबा का है, बाबा का दिया हुआ है, संभालना भी आपको है, परिवार को भी आपको ही संभालना है, बाबा थोड़ी संभालेंगे। बाबा को वारिस बनाओ। फिर बाबा ने कहा जो गरीब बच्चे हैं वो वारिस जल्दी बना लेते और जो अमीर हैं उनको थोड़ा होता है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो सोचते रहते हैं, वो वारिस नहीं बनाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा कितना लवली है और वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। वो बहुत लवली भी है, टीचर भी लवली है। लौकिक में बाप अलग है, टीचर अलग है और सतगुरु अलग है। फिर बाबा ने कहा देखो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति वालों के भी एक बहुत अच्छी बात है, भगवान को याद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भगवान कौन है वो तो नहीं जानते। याद करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है वो नहीं जानते। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 25 जून 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज की तारीख है 25 जून 2025। मीठे बच्चे बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज का प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। उसका उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे कि आदत पड़ी। पहले जमाने में कितना पक्का होता था, घर में माँ बाप बच्चों को पक्का करते थे कि पहले भगवान को याद करो फिर आगे जाकर के दूसरे काम शुरू करो। आजकल की तो बात अलग है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे कि आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कहते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अब ऐसे नहीं कहे। कौन सी बात, कि बाबा ही दुख देता है। बाबा कहते तुम बच्ची अब ऐसे नहीं कहेंगे, फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है, तुम बच्चे अब ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचयिता कहा जाता है, लेकिन किसका रचता है? कहते वो रचयिता है, लेकिन किसका रचता है? नई दुनिया का रचयिता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं। सुखधाम है, स्वर्ग है, लेकिन है कहाँ, क्या है वो नहीं समझते ना। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, वह तो हो गया छोटा मंदिर। अब छोटा सा मंदिर होगा कहेंगे सुखधाम है, कहाँ इतना बड़ा सुखधाम, कहाँ ये छोटा सा। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था, बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना ले। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहना कितना बड़ा मालिक और कितना छोटा कर देना। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था, तुमको भी पहले कुछ भी पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है, श्री बाबा तो सब कुछ जानते हैं ना, वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ये तो किसको पता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन, गायन करते लेकिन है कौन वो तो नहीं जानते ना। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, है तो मनुष्य ही ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला ब्रह्मा की संतान। बाबा कहते मुख की संतान है तो प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बना करके तुम बच्चों को मुख वंशावली बनाया है, इसमें प्रवेश किया, फिर कहा ये हमारा बच्चा भी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, बाबा ने क्या कहा, ये मेरा रथ भी है, ये मेरा बच्चा भी है, और बाबा हमेशा कहते ये मेरा बुर भी बच्चा है। और ब्रह्मा बाबा को भी नशा रहता था, मैं शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ, मैं पहला बच्चा हूँ। जब बाबा को मुरली चलती थी तो ब्रह्मा बाबा को इस बात की बहुत नशा रहता था कि शिव बाबा जो मुरली चलाते हैं पहले पहले कौन सुनता है, पहले पहले कौन सुनता है बताओ, ब्रह्मा बाबा। जैसे ट्रांसलेशन करते ना, मुरली चल रही है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो एक सेकंड का फर्क पड़ता, फिर इंग्लिश से दूसरी भाषा में करेंगे उसमें दो सेकंड का फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसे हमारे पास शिव बाबा के महावाक्य सुनते तो एक सेकंड का फर्क पड़ता है, तो पहले ब्रह्मा बाबा सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो कि ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ महिमा गाते रहते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। वही हम सब आत्माओं का पिता है, वह भी बिंदु रूप भी है, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये नॉलेज भी अभी तुमको ही मिली है, पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। भगवान को याद किया लेकिन भगवान क्या कौन है क्या करते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं था ना। तो बाबा कहते हैं पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था, मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उनको ही समझाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते ना तो उनका वास्तविक परिचय क्या है बाबा की, तो उनको भी समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं पढ़ाते हैं। ये राजयुग है ही कहाँ के लिए, सतयुग नई दुनिया के लिए। बाबा जो ज्ञान योग सिखाते हैं, नई दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये राजयुग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र बैठ करके नहीं सुनाते, शुरू शुरू में जब बाबा मुरली चलाते थे, रोज ही मुरली चल रही है, तो बाहर वालों को होता था कि ये डायरेक्ट ज्ञान नहीं है, जरूर बाबा कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। एक बार एक व्यक्ति आया, उसको बहुत वकील था, तो कहा मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये पहले पढ़े नहीं और फिर सुना, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो एक बार आया और यहाँ पर बाबा से कहा, बाबा मैं आपके साथ के सब अनुभव करना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं, तो हर समय बाबा के आसपास घूमता था, देखता था कि बाबा कहीं कुछ पढ़ तो नहीं रहे हैं, और रात के समय भी। फिर कहा सारा दिन तो कुछ ऐसा है नहीं, रात के समय बाबा जब 2 बजे उठ करके योग करते ना तो जरूर पढ़ते होंगे। तो फिर उसने कहा बाबा मैं भी 2 बजे आके योग करूंगा। बाबा ने कहा आ जाना। तो बाबा तो योग में बैठे एकदम चारों तरफ लाइट ही लाइट, और सुबह देखा तो चारों तरफ लाइट ही लाइट है। फिर वो कहता सचमुच ये परमात्मा का ही ज्ञान है, कोई बाबा शास्त्र पढ़ करके सुनाए ऐसा बाबा नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप कोई शास्त्र आदि नहीं बैठ कर सुनाते, जब तक करना शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति। अब भक्तों को भक्ति का फल भी तो चाहिए ना, इतनी भक्ति की है तो बाबा कहते उनको फल भी तो चाहिए ना। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सके, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो भक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत हैं, हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकले। कोई कहेगा ओ गॉड फादर, कोई परमात्मा कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई प्रभु कहेगा ना। तो बाबा कहते हैं हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने ही अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता, परमात्मा में नॉलेज है, वही ज्ञान से देते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंची से ऊंच पतित पावन ही सुप्रीम है। मनुष्य ही भगवान कहेंगे तो उनको क्या याद पड़ेगा, शिवलिंग याद पड़ेगा। जब हे भगवान कहते हैं ना तो उनको शिवलिंग याद आता है, बाकी शिवलिंग है क्या वो तो समझने की बात है ना। मनुष्य ही भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा, वह भी यथारत रीति नहीं, एक जैसे की आदत पड़ गई। कईयों को आदत पड़ जाती है ना हे भगवान हर बात में कहते रहेंगे, लेकिन है कौन भगवान वो तो जानते नहीं है। आदत पड़ी हुई है, जैसे हर समय किसी की आदत होती है वही शब्द बार बार रिपीट करता है। तो बाबा कहती हैं जैसे कि ये आदत पड़ गई है भगवान को याद करना है, फिर क्या कह देते हैं, भगवान ही सुख दुख देता है। वहां तो दुख का नाम नहीं था, कलयुग में है दुख और यहाँ सुख का नाम नहीं। सत्युग में सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं, और कलयुग में क्या है, दुख ही दुख है, सुख का नाम नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान वह सर्व आत्माओं का बाप, ये किसको भी पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जो सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना, कोई फिर कह देते वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। तो बाबा कहते क्या बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे में भी है मेरे में है, तो फिर क्यों उसको पुकारते, फिर क्यों हे भगवान कहते हो। कोई तो फिर कह देते कि वह सर्वव्यापी है, तेरे में भी है और मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है। आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता। अगर सब में परमात्मा तो क्या कहेंगे, परमात्मा ही कहना पड़ेगा। बाबा कहते मनुष्यों को क्या कहते हैं, जीव आत्मा कहा जाता है। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। कितना अच्छी रीति बाबा स्पष्ट करते हैं लोगों को समझाने के लिए, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। वर्षा किसको मिलता है, बच्चे को मिलता है ना। सब फादर कैसे हो सकते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, सब फादर हो जाएंगे तो भगवान से वर्षा कैसे मिलेगा, तो फादर सब कैसे हो सकते हैं। इतनी सी छोटी सी बात कोई की समझ में नहीं आती है, तब तो बाप कहती है बच्ची हमने आज से, तब तो बाप कहते हैं बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। बाबा हमेशा पूछते थे, बाबा के पास बच्चे आते थे, बाबा कहते थे बच्चे पहले मिले हो, तो जिनको ज्ञान पक्का होगा कि हाँ बाबा हम पहले भी मिले, कलप कलप मिले, और जो होंगे कच्चे तो वो क्या कहेंगे, बाबा हम मिले तो हैं लेकिन अभी पहली बार मिल रहे। तो बाबा पक्का समझ आते थे कि ज्ञान कितना समझा है। तो बाबा कहते हैं तब तो बाप कहते बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको ये ज्ञान कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी समझदार थे, इससे जास्ती समझदार और कोई हो नहीं सकता। कितनी अच्छी बात, तुम बच्चों से जास्ती समझदार और कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिली है वह फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ ये थोड़ी मालूम पड़ता है कि हम फिर से गिरेंगे। वहाँ तो अपने राज्य में सुख भोग रहे हैं, बहुत खुशियों में नाच रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि हम गिरेंगे। अगर उनको पता पड़ जाए कि हम गिरेंगे तो क्या होगा, उनका सारा सुख जो है खुशी गायब हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वहाँ ये थोड़ी मालूम रहता है कि हम फिर से गिरेंगे, ये मालूम हो तो फिर सुख की वासना भी ना आए। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, ये ड्रामा का ज्ञान अभी सिर्फ किसके पास है बोलो, ड्रामा का ज्ञान अभी सिर्फ किसके पास है बोलो, बट्टी वाले बोलो, बाबा के पास है ना, हैं और किसके पास है बोलो बोलो, बट्टी वाले बोलो, हाथ खड़ा करो बट्टी वाले बोलो, ड्रामा का ज्ञान पक्का है, हैं पक्का है वो हाथ खड़ा करो। एक है ज्ञान होना, एक पक्का होना, और दूसरा है उस पर प्रैक्टिकल चलना। तो बाबा कहते हैं अब ये ड्रामा का ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनात। कितनी बड़ी अच्छी बात, ये ज्ञान केवल बाबा अपने बच्चों को ब्राह्मणों को सुनाते, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते। अब बाबा थोड़ी एक एक जगह जाएगा ज्ञान सुनाने के लिए, कहीं आते थे नए नए जिनको पता नहीं होता था, बाबा के सामने आते थे, वो ज्ञान की बाहें बहस करते थे, उनको पता ही नहीं कि किसके आगे बहस कर रहे, जो ज्ञान की अथॉरिटी है उसके आगे बात करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम ब्राह्मण ही जाकर के औरों को ये ज्ञान सुनाते हो। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर ब्राह्मणों को स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखलाया था। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता। वैकुंठ का मालिक बोलते हैं लेकिन वो विश्व का मालिक था वो नहीं जानते, परंतु वह विश्व का मालिक था ये बुद्धि में नहीं आता है। जब उनका राज्य था तो और कोई भी धर्म नहीं था, उनको ही उनका ही सारे विश्व पर राज्य था। बाबा कहते जब उनका राज्य था तो और कोई भी धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था। और कहाँ पर था बताओ, कलकत्ता वाले बताओ, कलकत्ता में होगा ना कि नहीं? क्यों? क्योंकि बाबा भी तो कलकत्ता से थे। कहाँ पर राज्य था बताओ, पता है कहाँ था? कलकत्ता में था। कहाँ था कौन बताएगा? है बोलो बोलो, है कहाँ था? नहीं पता है, अपनी राजधानी का नहीं पता है? अपनी राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली है, यमुना का कंठा होगा। और कलकत्ता क्या होगा? आपका रहने का स्थान होगा या क्या होगा? बोलो बोलो, पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक करने। अभी कलकत्ता देखने जाते हैं लोग, बहुत जाते हैं, वहाँ जाना है, कोलकाता देखना है, देखने के लिए जाते हैं। तो वो क्या होगा? क्योंकि वो सागर है, सागर के ऊपर से क्रॉस करेंगे, वो आपका पिकनिक स्पॉट होगा। और राज्य कहाँ पर करेंगे? कहाँ पर करेंगे? अपनी राजधानी में है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बाबा कहते हैं जब उनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और यमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं, कौन बता रहे हैं? भगवानो वाच्य। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे, हम क्या बन रहे हैं? अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ये बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर हम आकर 84 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। बाबा कहते हमेशा बच्चों को सदा खुश रहना है, तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा, बाबा कहते ऐसा बाबा क्या है? केवल हमारे लिए आए। बोलो किसके? ताली तो बजाओ। केवल बाबा आपके लिए आए, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करना है, थैंक्स देना। केवल आपके लिए और किसके लिए नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो बहुत खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं खुशी से गुदगुदी होती है ना, गुदगुदी से मुझे बहुत खुशी होती है ना, तो क्या होने लगता है? तो बाबा कहते हैं तो खुशी से गुदगुदी होती है ना। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया। अब वो हाथ खड़ा करे जिन्होंने बाबा को अपना वारिस बनाया, पक्का सोच के करना, ऐसे नहीं है। बाबा फिर हिसाब भी लेंगे। लेकिन बहुत हल्का भी कर दिया बाबा ने। बच्चे फिर कहते हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको वारिस बनाया। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं, भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात वारी जाना अर्थात बलिहार जाना नहीं, अर्थात बच्चा बनाएंगे। ये भी अपने बच्चों को भी वारिस बनाते। शिव बाबा क्या करते हैं, अपने बच्चों को वारिस बनाते। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे हैं, बाबा को वारिस बनाना ये भी गृह बातें हैं। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना चाहिए, इसमें बुद्धि का काम है, समझा ना। कई वारिस बनने में सोचते कैसे होगा कैसे, बाबा कहते बाबा कुछ भी नहीं लेते, इसमें केवल बुद्धि से सरेंडर करना। बुद्धि से सरेंडर मीन्स ये सब बाबा का है, बाबा का दिया, बाबा तो लेते नहीं है। कई बच्चे आते थे बाबा के पास, बाबा मेरे पास ना इतना धन संपत्ति आप ले लो, बाबा कहते अपने पास रखो, बाबा को क्या जरूरत पड़ी है, बाबा तो देने वाला है, तुमको मिला है तो तुम सफल करो, बाबा को क्यों कहते हो कि हमारे से ले लो, बाबा थोड़ी लेता है। और देने वाला पूछता नहीं है, जो देना के लिए कहता है ना पूछता है, समझ लो उसको बिल्कुल नहीं देना। कहने वाला कहेगा मेरे पास इतना पैसा है हम आपको देंगे, न समय आएगा न उसका सफल होगा। तो जिसको सफल करना है वो क्या करना है, पहले से कर लेते ना। तो बाबा कहते हैं अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे और साहूकार क्या कहेंगे, मुश्किल करेंगे। जब तक पूरी रीति से ज्ञान न उठाए इतनी हिम्मत नहीं रहती है। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको वारिस बनाए। माताएं आती थी बाबा से, बाबा उनसे पूछते थे तुम्हारे कितने बच्चे, माताएं कहती थी बाबा तीन है। तो बाबा पूछते तीन कौन है, बाबा एक तो पहला शिव बाबा और बाकी दो लौकिक। और अमीर को पूछेंगे कहेंगे तीन बच्चे हैं, बाबा पूछेंगे कौन, बाबा ये तीनों बच्चे हैं। कभी नहीं कहेंगे शिव बाबा मेरा बच्चा है, क्यों, उनको लगता है शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो करने में थोड़ा दिल ऐसे ऐसे होता है, तो बाबा जानते हैं क्या होता है। तो बाबा कहते हैं साहूकार मुश्किल करेंगे, जब तक कि पूरी रीति ज्ञान ना उठाए इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको वारिस बनाएंगे। अब कोई कहता जो कहता वारिस बनाएंगे वो हाथ खड़ा करो, अरे बनाया नहीं क्यों हाथ खड़ा किया, पहले बोलो ना वारिस बना फिर हाथ खड़ा कर दिया, बोलो बनाया है ये बनाएंगे नहीं बनाया, और जो कहते बनाया वो हाथ खड़ा करो, हाँ ये करो, जो कहते बनाया वो हाथ खड़ा करो, थोड़ी है अच्छा जो कहते और जो कहते बनाएंगे, अब ठीक है अब पक्का बनाएंगे नहीं बनाया है, ठीक है ना, अब ये पक्का करना है ना। शब्दों में भी सेंटेंस में भी कितना फर्क है, जिन्होंने नहीं बनाया उसको बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा हम तो आपको वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है, अब वारिस बना लेंगे है क्या, कखपन है, आज है कल कैसा है, कैसा कैसा होता ना। तो बाबा कहते हैं हमारे पास रखा ही क्या है, वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी करना है। वारिस बनाते ना कहेंगे बस बाबा ही सब कुछ करे, बाबा कहते नहीं सब कुछ हर एक अपने पास ही रखना है, अपना शरीर निर्वाह भी करना है और बच्चों को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है और गृहस्थी को भी संभालना है। वारिस बनाकर फिर श्री निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना, बुद्धि से क्या रहे बाबा का है हम ट्रस्टी हैं। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं, बाप तो सिर्फ देखते हैं, कोई पाप कर्म तो पैसे से नहीं करते। अब बाबा इस पर बहुत ध्यान खिंचवाते थे, ये कर्मों का बहुत बड़ा हिसाब किताब। बाबा कहते थे एक तो पैसे से कोई भी पाप कर्म नहीं करना, दूसरी बात बाबा कहते थे पैसा ऐसे को मत दो जो कि जाकर के गलत काम करे। तीसरी बात बाबा कहते थे, ब्राह्मण परिवार के अंदर दादी भी पक्का कराती थी कि ब्राह्मण परिवार में हम सब ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं। पैसे की लेन देन कभी भी भूल करके नहीं करना। बहुत हैं जो क्या करते हैं, गुपचुप पैसे की लेन देन कर लेते हैं, और फिर जब वापस मिलने का टाइम आता है नहीं मिलता है तो पूरी कहानी आके सुनाते, फिर कहेंगे दादी को कहते थे दादी इसको कहो मेरा वापस करे। अरे दादी कहती है जब दिया उस समय कहेंगे बताना नहीं, दादी को नहीं बताना, बड़ी टीचर को नहीं बताना, और जब कर लेते हैं नहीं मिलता है फिर पश्चाताप करते। इसलिए ब्राह्मण परिवार में क्या करना है, ज्ञान की लेन देन करो, खुशी की लेन देन करो, और जो कुछ भी करना है वो यज्ञ निमित्त करते हैं तो उसमें भाग्य भी बनता है। तो इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कर भी दिया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्धि उस तरफ खींचती है ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं कोई भी पैसे से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं बाप तो सिर्फ देखते हैं कोई पाप कर्म में पैसे खराब तो नहीं करते, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, पुण्य आत्मा बनाने में थोड़ा थोड़ा सोच के करते हैं, बाकी काम में कभी कभी जल्दी से कर देते ना, सर्विस भी कायदे से करते हैं, ये पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। कई बार बच्चे जाते थे बाबा के पास किन बातों की राय पूछते थे, बाबा कहते थे राय तो तब दे पहले वो समझे ठीक तरह से सर्विस कर रहा है, तब बाबा उसको प्रॉपर राय देंगे, मन मत करेगा तो कैसे राय देंगे ना। तो बाबा कहते हैं सर्विस भी कायदे से करते हैं, ये पूरी जांच करेंगे फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालता था ना, शिव बाबा बता रहे ब्रह्मा बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा तो अपने धंधे से भगवान के अर्थ ईश्वर अर्थ बहुत ज्यादा निकालते थे, और वो तो बहुत ज्यादा भी करते थे। तो बाबा कह रहे हैं ये भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ हम करते हैं उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं, कोई दुखी गरीब है तो समझेंगे ऐसा कर्म किया, कोई होता ना गरीब होता है तो उसको लगता है मैंने पूरे जन्म में कोई ऐसा कर्म किया अब मेरी हालत है। तो बाबा कहते हैं वो तो क्या है थोड़ा बहुत करते हैं तो उसका रिटर्न मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं, रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म बन जाते हैं, सत्यु और त्रेता में रावण ही नहीं है इसलिए वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता है, यहाँ जो अच्छा कर्म करता है उनका अल्प काल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिचपिट तो रहती है ना, क्योंकि अल्प काल का सुख है। अभी बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं, तुम जानती हो ये चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर गरीब हो जाता, भारत ही सबसे बड़ा ऊंच अमीर फिर गरीब हो जाता है। आज भारत से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहले गद्दी इनकी चली थी, श्री कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, पहली गद्दी किसकी, लक्ष्मी नारायण की, श्री नारायण नाम पड़ा। बाबा बता रहे हैं पहले गद्दी इनकी चली थी, श्री कृष्ण प्रिंस पहले नंबर का था, श्री कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, श्री नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो कि तुमको वंडर लगता है, बाबा आप सारे रचयिता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना ऊंच बनाते हो, कितना ऊंच पढ़ाते हो, वंडर लगता है ना। बाबा एक तो नॉलेज भी सुनाते और कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते, आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलियार जाऊं, हमको तो एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं कर। जिसको पक्का हो जाए ना बाबा अच्छी से पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या आएगा बुद्धि में, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को भी याद करना पड़ा। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं। स्कूल में चले जाओ, हिस्ट्री का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, और इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग, पता नहीं कितने टीचर्स होते हैं, और यहाँ पर केवल एक ही टीचर है। तो बाबा कहते हैं उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है, यहाँ तो एक ही टीचर है। बाबा कहते हैं कितना लवली है, बाप भी लवली, टीचर भी लवली, और सतगुरु भी। सतगुरु क्या है, स्ट्रिक्ट है ना, सतगुरु तो स्ट्रिक्ट होता है ना, तो क्या कहेंगे बोलो, बाप भी लवली, बोलो ना शिव, बोलो बाप, बाप ही लवली है, हमारा बाबा लवली है, हमारा टीचर और हमारा सतगुरु लवली है। पक्का सतगुरु पूरा हिसाब ही लेता फिर है। तो बाबा कहते हैं बाप लवली, टीचर लवली, आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं, बाबा के सामने बहुत वंडर लगता था, बाबा के सामने आते थे बच्चे, बाबा को देख कर कहते बाबा हम आपको भूल जाते, अरे बाबा के सामने बैठे हो, बाबा से बात करें और बाबा को कहते बाबा हम आपको भूल जाते, तो बाबा को वंडर लगता, देखो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर भी कहते बाबा भूल जाते, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको याद क्यों नहीं करती है। गाते भी हैं कि ईश्वर की गत मत न्यारी है, बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है, ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ये थोड़ी बाबा हम आपको भूल जाते हैं, एक तरफ कहेंगे बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, बाबा आपकी गतमत भी बहुत न्यारी है, बाबा ऐसा ऐसा कहेंगे, फिर बाबा को कहेंगे बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा को वंडर लगता था कि बाबा के सामने बैठे कहते बाबा हम आपको भूल जाते, अभी यहां से कभी नहीं कहना, बाबा सदा आपके सामने है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, यही है उनकी प्रॉपर्टी है, उसको नशा रहता है, इतनी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। ये तो है, कौन है, पतियों का पति, बापों का बाप। अच्छा भाई कहेंगे पतियों का पति है, वो तो कहेंगे बापों का बाप है ना, बहने कहेंगी पतियों का पति है। बाबा कहती हैं ये तो है पतियों का पति, बापों का बाप, इनसे हमको कितना सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है, गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में, बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, ये भी वानप्रस्थी, और शिव बाबा कौन है, हैं? ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थी और हम सब वानप्रस्थी या गृहस्थी, वानप्रस्थी पक्का हैं? जो कहते हैं वानप्रस्थी बाबा को बोलो वानप्रस्थी है, सब वानप्रस्थी है। तो बाबा कहते शिव बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थी, बच्चे वानप्रस्थी, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा भी वानप्रस्थी, क्यों वानप्रस्थी है, थोड़ा सा ज्ञान सुना है चला जाएगा फिर कहाँ आएगा, तो वानप्रस्थी हो गया ना। तो बाबा खुद बोल रहे हैं, बाप भी कहते मैं भी वानप्रस्थ में आया हूँ, ये भी वानप्रस्थी और मैं भी वानप्रस्थी, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। तो सारी सभा किसकी हो गई, जाते ना बूढ़ा आश्रम है, कहते सारा आश्रम जो बूढ़ों का है, और ये कौन सा है, वानप्रस्थियों का क्या है, घर है, सब वानप्रस्थी बैठे हैं ना, ये वानप्रस्थी बहुत अच्छी है, खेलते हंसते गाते खाते पीते मौज करते हुए ना, बाबा कितने मौज कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं, बाप टीचर तीनों इकट्ठे हैं, बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बनकर के साथ ले जाते हैं, उस एक बाप की कितनी महिमा है, ये बातें और कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रहती। बाबा ने जो ज्ञान दिया इसके आगे और कुछ सुनने की दरकार भी नहीं रहती, बाबा कहते इतनी ऊंची नॉलेज है और कोई दरकार ही नहीं है। बाबा कहते हैं इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं, ना जानने की दरकार रहती है, हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करें, और क्या चाहिए, विश्व का मालिक बन गया तो उसके आगे और क्या चाहिए। बाबा कहते विश्व के मालिक बन गया और कुछ चाहिए, उसके आगे है ही कुछ नहीं मार्जिन। तो बाबा कहते हैं हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे, बच्चों की बुद्धि में ये हो तब खुशी में और उसी याद में रहे। कौन सी बात, कि हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, खुशी भी रहेगी, बाबा की याद भी रहेगी। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म ही है, क्या है माया का धर्म बताओ, माया का धर्म है याद में विघ्न डालना, फिर क्या करना, माया का धर्म है योग को तोड़, और योग को तोड़ करके क्या करती है, फिर अच्छी तरह से अपना काम करती है, कभी बाबा कहते कच्चा खा जाते, कभी बाबा कहते जो उसे थप्पड़ मारती मुंह टेढ़ा कर देते, मुंह पीछे की ओर चला जाता, माया तो क्या क्या करती है ना। तो बाबा कहते हैं माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, योग में ही माया विघ्न डालती है, भूल जाती है, माया के तूफान बहुत आते हैं, ये भी ड्रामा में नींद है, सबसे आगे तो ये है। शिव बाबा कहते थे अगर माया का तूफान ना आए तो सब संपन्न बन जाए, फिर वो आती है बुलाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। कभी कभी बच्चे बाबा को कहते थे ना बाबा माया को नहीं आए, बाबा कहते मैं माया को ऑर्डर करता हूँ जाओ जोर से मेरे बच्चों से लड़ो, ताकि पता रहे कितना इन्होंने योग बल जमा किया है। तो बाबा कहते हैं इसमें डरना नहीं है, सबसे आगे तो ये है। आप बाबा को थोड़ी आते थे, लेकिन शिव बाबा इसलिए बताते ब्रह्मा बाबा का कि ये है अनुभवी है तो तुम भी तो वैसे बन सकते हो, सबसे आगे तो यही है। तो इनको सब अनुभव होते हैं, मेरे पास जब आए तब तो मैं समझाऊ ना। अब सुना अंतर, कोई भी शिव बाबा को मत कहना बाबा हमारे पास ये माया का तूफान आता है, बाबा कहते मेरे पास कहाँ से आता है, मेरे पास तूफान आए तो मैं बताऊ ना, शिव बाबा के पास माया का तूफान कहाँ से आया, और जिसके पास आते वही सुना सकता है ना। तो बाबा कहते हैं इनको सब अनुभव होते हैं, मेरे पास जब आए तब तो मैं समझाऊ ना, ये सब माया के तूफान क्या होगा आएंगे, किस लिए आएंगे, किस लिए आएंगे, अरे बोलो आने दो ना, आएंगे हम तो विजयी रतन है ना, विजयी रतन। तो बाबा कहते हैं ये सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं तुम्हारे को भी आएंगे। अब बाबा के पास थोड़ी आते तूफान, बाबा तो इसलिए बच्चों को हल्का करने के लिए कि दिल शिकस्त ना हो जाए, बाबा के पास भी आते हैं तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योगी लगा रहे तो फिर क्या होगा, कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर तो यहाँ भी नहीं रहेंगे, आएंगे विजयी बनेंगे, तब तो जाके विश्व का मालिक बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान ही ना आए, योगी लगा रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर यहाँ रह ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, शिव की बारात गाई हुई है। शिव की बारात में तो क्या क्या दिखाते, हम सब कौन है, शिव बाबा की बारात के कौन है, बाराती है ना सब। तो बाबा कहते हैं शिव की बारात गाई हुई है, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं किस लिए, सबको ले जाने के लिए। सत्यों में थोड़ी इतनी आत्माएं रहेंगे, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना, ये राज है। ऐसा नहीं को बाबा को दे दो, बाबा ही हमें संभालेगा। बाबा कहते हैं बुद्धि से बाबा को वारिस बनाओ, सब कुछ अपना कैसे करना, ट्रस्टी होकर। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। आज का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है, जहाँ सत्यता है वहां प्रत्यक्षता होती। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। कभी कोई बात कहनी होती ना, धीरे 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 बोलते। बाबा की अथॉरिटी से बोलो, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बाप की मानेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक है और ये एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले वही संस्कार इमर्ज होंगे, गॉड ईश्वर। शुरू शुरू में जितने भी धर्म संस्थापक आए सभी ने एक ही बात कही, गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन सहज करना ही, स्लोगन सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। आज का व्यक्ति इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देती है वैसे ही अपनी आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में। आत्मा का स्वरूप देखना अर्थात अनुभव में आए, मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कोई भी दिखाई न दे व स्मृति में न आए, ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। तो आज मातेश्वरी जी की, कल भी मातेश्वरी दिवस हम सब ने मनाया, मम्मा के साथ के अनुभव भी किए। मातेश्वरी जी के तो, प्यारी माँ की तो कितनी विशेषता है, जितना वर्णन करते जाओ उतना कम ही है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज का हम बता रहे हैं मातेश्वरी जी के अंदर क्या विशेषता थी। आज तारीख है 25 जून, दिव्य बुद्धि के गुण द्वारा स्मरण शक्ति से संपन्न। मम्मा की बुद्धि इतनी दिव्य थी तो उनकी स्मरण शक्ति मेमोरी पावर भी बहुत तेज थी। दिव्य बुद्धि के गुण द्वारा स्मरण शक्ति से संपन्न, माया शुरू से ही बहुत होशियार मम्मा शुरू से ही, फिर से बताती हूँ, बुधवार दिव्य बुद्धि के गुण द्वारा स्मरण शक्ति से संपन्न, मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार दूरदेशी अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि जो एक बार सुना और वह बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी और वह अंदर छप गई, उसके 10 राज स्पष्ट करके सुना। बाबा ने एक पॉइंट सुनाए, फिर मम्मा क्या करती थी, उस एक पॉइंट के बाबा के कितने गहरे राज हैं वो स्पष्ट करके बताती थी। उसके 10 राज स्पष्ट करके सुनाती और सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती। तो जिस प्रकार मम्मा ने व्यर्थ चिंतन से किनारा किया, परमात्म चिंतन किया, उससे उनकी बुद्धि दिव्य बन गई, ऐसे हम भी दिव्य बुद्धि संपन्न बनने का पुरुषार्थ करें। तो मम्मा के लिए बाबा क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार मम्मा ने व्यर्थ चिंतन से किनारा कर परमात्म चिंतन किया जिससे उनकी बुद्धि दिव्य बन गई, ऐसे हम भी दिव्य बुद्धि संपन्न बनने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज क्लास की टोली गरम गरम भुट्टा, गरम गरम भुट्टा हिस्ट्री हॉल के पास मिल रहा है। आप सभी जब यहाँ से जाएंगे तो हिस्ट्री हॉल के पास आप सबको गरम गरम भुट्टा मिलेगा। बाकी फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से सूचना है, कई भाई बहने पूछते रहते हमको मम्मा बाबा का या एडवांस पार्टी के दादियों का फोटो चाहिए। मम्मा बाबा शिव बाबा परम धाम बाबा ट्रांसलाइट एडवांस पार्टी दादियां स्वर्ग श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण वरदान वर्त लेखा साकार बाबा की हिस्ट्री के हॉल के फोटो, हिस्ट्री हॉल में बाबा के फोटो है ना, हिस्ट्री हॉल के फोटो उपलब्ध हैं। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में ये मिल सकते हैं। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में पांडव भवन में पीछे भंडारे के पीछे नीचे जो है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है, और उसकी टाइमिंग है सुबह 8:30 से 12 बजे तक। जिस किसी को इस प्रकार से फोटो स्लोगन या कुछ भी चाहिए, क्योंकि इधर उधर पूछते रहते ना, तो जिस किसी को चाहिए, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है डाइनिंग हॉल की तरफ, नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है, सुबह 8:30 से 12 बजे तक खुला होता है। जिस किसी को कुछ लेना हो, खास करके एडवांस पार्टी के दादियों के भी मांगते हैं तो वो भी मिल जाते हैं, सब कुछ उपलब्ध है, तो वह सब वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, और भट्टी वालों के लिए तो इंद्र